नमस्कार। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में ब्रह्मा कुमारीज की विशेष ऑनलाइन प्रस्तुति में आप सभी का स्वागत है। 21 दिवसीय इस योगा चैलेंज में आप हमारे साथ जुड़िए और हर दिन योग को संपूर्ण रीति से समझने के प्रयास कीजिए। सिर्फ समझना ही नहीं, उसे जीवन में उतार कर उसे फॉलो करने के लिए भी कुछ सिंपल स्टेप्स हम सीख लेते हैं। और योग इतना मुश्किल नहीं है जितना लोग समझते हैं। और कल के सेशन में हमने पतंजलि के अष्टांग योगों के अलग अलग सूत्रों के बारे में समझने की कोशिश किए थे। उनमें से कुछ योग क्या हैं, उसके अलग प्रकार क्या हैं, योगासन क्या हैं, यम नियम क्या हैं, इन सब चीजों के ऊपर हम आगे चर्चा रखेंगे। मगर शुरुआत में हम करेंगे योगासन, यानी शुरुआत हम फिजिकल योगा से करेंगे। तो आज भी हमारे साथ योगा सिखाने के लिए योगाचार्य हरीश वैद्य जी जुड़े हैं बड़ौदा से। तो आइए उनके साथ साथ आज हम त्रिकोणासन करते हैं। तो हो जाइए तैयार, जहां आप बैठे हैं वहां से खड़े हो जाइए और हमारे साथ साथ योगा कीजिए। चलिए ले चलते हैं सीधे हरीश वैद्य जी के पास। आज हम त्रिकोणासन। ओम शांति, धन्यवाद। आज हम त्रिकोणासन का अभ्यास करेंगे। त्रिकोणासन वो ऐसे फायदे कराने वाला आसन है जिन लोगों को यहां इस साइड में बहुत चर्बी का भरावा हो गया है, जांघों के इस साइड में चर्बी का भरावा हो गया है, जिनको पार्श्व भाग में नितंब में बहुत चर्बी आ गई है, इकट्ठा हो गई है, मांसल भाग हो गया है, फिर जिनको यहाँ पर भी मांसल भाग हो गया है जांघों के पिछले भाग में, उन लोगों के लिए बहुत फायदेमंद है। इस भाग में तो खास बहुत फायदे होंगे। फिर जिनको स्कंद में एकलाओं में दर्द है उन लोगों के लिए अच्छा है, जिनके पैर फ्लैट फुट है, बहुत ध्यान से सुनना, जिनके पैर फ्लैट फुट है, बिल्कुल सपाट पैर है, जिनके पैरों में गैप नहीं है, उन लोगों को आगे जाके बहुत दिक्कतें रहती है, चलना भी भारी हो जाता है उनको, फिर डॉक्टर एक थोड़ा सपोर्ट दे देता है, गोलाकार सपोर्ट, और उनको बूट पहनने होते हैं और बूट के नीचे वो रख देना होता है, फिर उनके पैर अंदर से गोल करने की विधि डॉक्टर बता देते हैं, लेकिन नहीं हो पाते हैं वो, इसलिए फिर उनको दवाइयों पर उतर जाना पड़ता है। इसलिए फिर जिनको सभी जोड़, उनके जितने भी जोड़ भगवान ने दिए हुए शरीर में, उन सभी जोड़ों के लिए अगर अच्छे से अच्छे एक्सरसाइज हो, शरीर को संतुलन में लाने की एक्सरसाइज हो, तो ये त्रिकोणासन है। त्रिकोणासन में एक त्रिकोण जैसा शेप बनता है, इसलिए भी शायद इसको त्रिकोणासन कहते हैं, और इससे शरीर को तीन आयामों में काफी फायदे होते हैं। उपला हिस्सा, बीच वाला हिस्सा और नीचे वाला हिस्सा, इन हिस्सों में भी बहुत फायदे रहते हैं, इसलिए त्रिकोणासन में ये फायदे भी देखने होते हैं। हम क्या करेंगे, 2 फुट का फासला हो, हाथ इस तरह से लेंगे और ऐसे करेंगे, जिस ओर आपने झुकना है उस पैर को थोड़ा उस दिशा में करेंगे। जैसे मैं लेफ्ट में झुकने वाला हूं तो मैंने लेफ्ट पैर को आगे की ओर ले लिया है, उस तरफ मोड़ दिया है, मेरा राइट पैर ठीक है, और धीरे धीरे मैं सांस छोड़ते 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 फिर सांस लेते 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 मैं मूल स्थिति पर वापिस आऊंगा। इनमें आप देखिए, यहां बहुत खींचाव आएगा, यहां खींचाव आएगा, यहां खींचाव आएगा, आपको जहां जहां खींचाव की अनुभूति होगी ना, समझना वहां फायदे पहुंचने शुरू हो गए हैं। आप रोज बरोज करोगे तो उसमें फायदे तो बहुत ही रहेंगे। एक बार फिर से करेंगे, 2 फुट का फासला। अब मैं मेरी राइट की ओर झुक रहा हूं, आप भी कर सकते हैं। इस तरह से हाथ ले ले, ऐसे मोड़े, फिर राइट पैर को उस दिशा में मोड़े, राइट की ओर पंजे को धीरे 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 ऐसे झुकते हुए ऊपर के हाथ को देखेंगे, सात से दस सेकंड आप करेंगे, आपको बहुत फायदा होगा। इसमें समझो आपका विटामिन B12 कम है, विटामिन डी कम है, तो आपकी नस पर नस चढ़ सकती है, पैरों में भी, पेट में भी, पसलियों पर भी, आपको तुरंत इमीडिएट इफेक्ट से आपकी नस चढ़ जाएंगी, आंखों में आपको तारे दिखना शुरू हो जाएंगे, आंखों के सामने ऐसे छोटे छोटे जो रेसे होते हैं वो भी दिखना शुरू हो जाएंगे। ये इसकी साइंटिफिक बात है, ये साइंटिफिक अनुभव है। एक बार आप फिर से करिए और इसके अनुभव में डूबिए। इससे वजन कम होता है, इस साइड की चर्बी कम हो जाती है, हाथों में जान आती है। जिन लोगों को ये हाथ ज्यादा है वे लोग कृपया इस प्रकार की थोड़ी एक्सरसाइज कर लेना, ऐसे करके ऐसे 5-5 बार खींचना, फिर नमस्कार मुद्रा करके इस प्रकार से ऐसे 5 बार, फिर ऐसे 5 बार, ऐसे 5 बार, ये 5 बार एक्सरसाइज करना, तो इसके साथ साथ यहां पर भी आपको फायदा होना शुरू हो जाएगा। देखिए ये आसन की जो योग्यता है उसमें आप थोड़ा ध्यान देना। जब स्त्री पीरियड्स में हो, माहवारी में हो, तब न करे। प्रेगनेंसी में नहीं हो सकता है, पेट में अगर कोई गांठ है तो नहीं हो सकता है। जिनके बॉल एंड सॉकेट जॉइंट में अगर कोई दर्द है या बॉल एंड सॉकेट जॉइंट सूख रहा है वो न करे। फिर जिनके लोअर बैक में, अपर बैक में, सर्वाइकल जोन में, मध्य रीढ़ में कोई प्रॉब्लम है तो वो न करे। जिनके घुटने में बहुत स्वेलिंग है, लोअर बैक में स्वेलिंग है, पैरों के पंजे में स्वेलिंग है, जिनकी एड़ियों में दर्द रहता है वे लोग इसे न करें। कृपया अपने यूरिक एसिड की जांच करवा ले, और HLA-B27 जिनका पॉजिटिव है वे लोग भी नहीं करेंगे। कृपया पेट के मोटापे वाले बहुत ध्यान से करेंगे। ये अगर करना है तो साइंटिफिक फायदे उसके समझ के आगे बढ़ना, इससे बहुत सारे फायदे होंगे। अस्तु, वंदे मातरम।
बहुत बहुत शुक्रिया हरीश वैद्य जी का, और बहुत ही सुंदर तरीके से आज हमने त्रिकोण आसन करना सीखा है। और अगर आप दिन में कर रहे हैं तो सुबह उठने के बाद योगा करें, या अभी शाम को हमारे साथ आप लाइव योगा कर सकते हैं। और जैसे कुछ चीजें वो बैठकर करने वाले सिखा रहे थे, जैसे हाथ को ऐसे नमस्कार मुद्रा में करना और ये सब कुछ, मैं यहाँ बैठे बैठे कर रहा था। तो सिर्फ कार्यक्रम को देखें नहीं, कार्यक्रम के साथ साथ आप करते जाएं तो क्या होगा कि आप भी सीखते जाएंगे, और 21 दिन में आप 21 आसन सीख जाएंगे, कुछ नई चीजें सीखेंगे, प्राणायाम भी हम आगे सिखाएंगे आपको, तो ऐसे बहुत सारे बेनिफिट्स आपको मिलेंगे। तो चलिए अब वक्त हो रहा है आज के बोध के लिए, यानी योग को, जो संपूर्ण योग है उसे किस तरीके से समझा जाए उसके बारे में आज की चर्चा हम जारी रखेंगे। आज हमारे साथ राजयोगिनी गीता दीदी जी मौजूद होंगे, आइए दीदी जी के साथ जुड़ते हैं। नमस्कार दीदी, प्रणाम।
नमस्कार, ओम शांति।
अंतर्राष्ट्रीय जी दीदी, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पे ये जो हमारी विशेष कड़ी है, आज हम पतंजलि के योग सूत्रों के ऊपर अध्ययन कर रहे थे और कल आपने हमें सत्य के बारे में बताया था, और आज हम इस पर और ज्यादा जानकारी लेना चाहते हैं, एक अलग सूत्र के बारे में हम जानना चाहते हैं, कृपया आप हमें अवगत कराएं।
पतंजलि योग का जो प्रथम सूत्र है वो यम है, और यम में 5 बातें उन्होंने बताई है। सत्य के बारे में कल हम सभी ने देखा, क्योंकि बिना सत्य ज्ञान के आप योग कैसे करेंगे? योग करने वाले हम स्वयं कौन हैं और किससे हमें योग लगाना है, ये दोनों ही मूलभूत सत्यों को यथार्थ रूप से जानना बहुत जरूरी है। और स्वयं परमात्मा ही इसलिए सृष्टि पर आते हैं और हमें इन मूल सनातन सत्यों का ज्ञान देते हैं, और उस ज्ञान को प्राप्त करने से नेचुरली हमारे व्यावहारिक जीवन में भी, आपसी संबंधों में, कारोबार में या धन साधन के लेन देन में सत्यता आने लगती है। कहा भी जाता है कि सच्चे दिल पर साहब राजे, परमात्मा के लिए हम कहते हैं कि गॉड इज ट्रुथ, तो नेचुरली जितने हम सच्चे बनते हैं, सत्य ज्ञान से जीवन को जीते हैं तो हमारा जीवन यथार्थ बनने लगता है और परमात्मा भी हमारे पर खुश रहते हैं। यम में दूसरी बात जो बताई गई है वो अहिंसा। ये जैसे कि पतंजलि मुनि ने पांच बातें जो बताई है वो एक पिलर के समान है। पांचों पिलर के ऊपर ही हम योगी बन सकते हैं। अगर सत्य नहीं है तो उसको योगी कौन कहेंगे? सब कोई उसे ठगत कहेंगे, झूठा कहेंगे। अब दूसरी बात है अहिंसा, और अहिंसा का पाठ हमारे देश के अनेकानेक महान आत्माओं ने हमें सिखाया है। गौतम बुद्ध को याद करें, महावीर स्वामी को याद करें, बल्कि हर धर्म में, हिंदू धर्म में भी सत्य की बातें सिखाई गई हैं, अहिंसा की बातें सिखाई गई हैं। अहिंसा अर्थात हिंसा नहीं करना। अब हिंसा कई प्रकार से होती है। एक है कर्म द्वारा किसी पर वार करना, प्रहार करना और उनको शारीरिक दुख देना, उसको कहेंगे शारीरिक हिंसा। अब मेरे पर कोई वार करे तो मुझे अच्छा लगेगा? व्यक्ति को ये बात सोचनी चाहिए। जब हम दूसरों को हीन कमजोर समझकर, कोई गरीब है, स्त्रियां हैं, बच्चे हैं, उनको हम कमजोर समझकर हिंसा करते हैं, मारते हैं, क्या हमारे पर ऐसी कोई हिंसा करे तो हमें अच्छा लगेगा? ये तो आप जानते हैं कि हर शेर पर सवा शेर होता ही है। आप अपने आप को ताकतवर समझते हैं तो कोई आपसे भी बढ़कर है इस दुनिया। कोई इंसान नहीं है तो समय प्रकृति भी है। तो जब हमें, हमारे पर कोई हिंसा का आचरण करे, वो हमें पसंद नहीं है, तो हम और किसी पर कैसे वार कर सकते हैं, प्रहार कर सकते हैं? आज तो लोग इतने हिंसक बन गए हैं कि स्वार्थ के कारण औरों को मूली सब्जी की तरह काट कर फेंक देते हैं। ऐसी क्रूरता इंसान को शोभा नहीं देती है। हमें याद रखना चाहिए कि हम प्यार के सागर परमात्मा के बच्चे हैं। हमें हर कार्य प्यार से, समझ से, युक्ति से करना है। हमें क्रूरता, हिंसा, मारपीट, लड़ाई झगड़े, मारामारी, युद्ध का रास्ता नहीं लेना है। हमारी जो ओरिजिनल नेचर है वो शांति की है, प्रेम की है। हम परमात्मा के बच्चे हैं, जो परमात्मा प्यार का सागर है, जिसके लिए गॉड इज ट्रुथ, गॉड इज लव कहा जाता है। तो हमें प्यार और समझ का मार्ग अपनाना है। अहिंसा, हिंसा करना वो राक्षसी वृत्ति है जो हमें मनुष्य से दानव बना देती। आप जानते हैं कि राक्षस, दैत्य, दानव कोई अलग योनि के प्राणी नहीं हो गए। हम ही जब गुस्सा करते हैं, हिंसक बनते हैं, हम ही जब अहंकार में आते हैं, उस समय अगर अपना चेहरा हम आईने में देखें तो हम कैसे दिखाई देते हैं? हम ही राक्षस जैसे, दैत्य जैसे दिखाई देते हैं। इसलिए अगर हम प्यार के सागर परमात्मा को रोज याद करें, उनसे बुद्धि योग लगाएं और ये चिंतन करें कि हम प्यार के सागर परमात्मा के बच्चे, हम अपनी ओरिजिनल नेचर से भी प्रेम स्वरूप है। इसलिए देखिए, हमें प्यार चाहिए, हरेक हमें प्यार करे, रिस्पेक्ट दे, यही हम चाहते हैं, क्योंकि ओरिजिनली हम प्यार स्वरूप। कोई हमारी घृणा करे, नफरत करे, तिरस्कार करे, इवन हमें कोई निग्लेक्ट करे तो भी हमें अच्छा नहीं लगता है। तो हमें इस संसार के, इस पृथ्वी पर बसे हुए हर अस्तित्व को रिस्पेक्ट करना चाहिए। हरेक को जीने का अधिकार है। हम किसी को जिंदा नहीं कर सकते हैं तो हम मार भी नहीं सकते हैं। इसलिए महावीर स्वामी जी ने भी कहा है कि अहिंसा परमो धर्म है। वास्तव में प्रैक्टिकल धर्म यही है। तो जो योग मार्ग पर जाना चाहते हैं, उनके अंदर ये फंडामेंटल धारणा, सिद्धांत बहुत पक्का होना चाहिए। परमात्मा को याद करने वाले, कहते हैं ना, जो भगवान से प्यार करते हैं वो प्रकृति से भी प्यार करते हैं, पशुओं से भी प्यार करते हैं, वो इंसान को भी प्यार, वो स्वयं को भी प्यार करते हैं। और जब हम अपने आप को प्यार करते हैं, अपनी उन्नति करने लगते हैं, तो हमें अन्य सभी अस्तित्व के लिए प्यार होता है। इसलिए योग मार्ग पर जाने वाले भाई बहनों, हिंसा का तो स्वप्न में भी हमें विचार नहीं करना। इस प्रकार चलो, कोई हाथ से दुख नहीं देते हैं, माना कोई वाणी के द्वारा दुख देते हैं, ऐसे कटु वचन बोलते हैं जो सामने वाली व्यक्ति जिंदा जल जाती है। कहते हैं ना कि तलवार के घाव मिट जाते हैं पर वाणी के घाव नहीं मिटते। उसे जीवन भर वो शब्द याद रहते हैं और उनको दुख होता रहता है। हम किसी की ग्लानि करते हैं, अपमान करते हैं, निंदा करते हैं, ये सब प्रवृत्ति दुख देने वाली है। वो व्यक्ति उपस्थित है या नहीं, परंतु इस प्रकार की वाणी, शब्द प्रयोग उस व्यक्ति को दुख पहुंचाते हैं। दूसरों की नजर में किसको बिना मतलब गुनहगार साबित करना, बिना मतलब उसकी इमेज बिगाड़ना, ये कोई ऊंचा काम नहीं है। इसलिए हमें शब्दों को भी सोच समझ कर बोल। कहते हैं एक बार मुख से निकल गया शब्द वापिस नहीं आता है। इसलिए हमें बहुत सोच समझ कर बोलना है। हम सबका अनुभव है कि जितना हम परमात्मा से मन बुद्धि लगाते हैं, उनकी स्मृति और चिंतन में हम रहते हैं, तो हमारे, हमें इतनी गहरी अलौकिक दिव्य अनुभूतियां और प्राप्तियां होती है कि अपने आप वाणी पर संयम आता है। हमारे मुख से वो शब्द निकले जो औरों को शक्तिशाली बनाए, हिम्मतवान बनाए, उनमें आशा, उमंग, उत्साह जगाए, ऐसे शब्द हमें बोलने। अगर हम किसी को कोई शिक्षा, सावधानी देते हैं तो भी शांति और प्रेम से। जरूरी नहीं है कि हम गुस्से में आ जाए, उबलने लगे, नहीं। हर अस्तित्व का अपना स्वमान होता है, इसलिए हमें वो उनको रिस्पेक्ट करते हुए, छोटा हो, बड़ा हो, स्त्री हो, पुरुष हो, शक्तिशाली हो या कमजोर हो, हर व्यक्ति को अपना स्वमान होता है। तो इस प्रकार व्यक्ति को ऊंची नजर से देखना, शुभ भावना रखना, शुभ शब्दों से बातचीत करना भी उस व्यक्ति को एम्पावर करना है। यही कारण है हमारे देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी ने बहुत ही अहिंसा के बल को महत्व दिया और अहिंसा से हमें आजादी दिलाई। तो ऐसे आजाद देश के हम नागरिकों को हमें अपने राष्ट्रपिता के बताए हुए सत्य और अहिंसा के मार्ग पर चलना चाहिए और तभी हम प्रैक्टिकल अर्थ में सच्चे योगी बन सकते हैं। ओम शांति।
बहुत बहुत शुक्रिया दीदी, बहुत ही ऐसी बातें सुनने को मिली हैं कि अहिंसा के बारे में जब हम सोचते हैं तो बहुत बार हमें लगता है कि हाँ हमें चीजें पता हैं, मगर आज इस चिंतन से, इस बोध से हमें पता चला है कि अहिंसा की गहराई क्या है। और ये योग का जो एक एक्सपेंशन है, योग के जो आठ सूत्र हैं उनमें से ये दूसरा यम है, सत्य के बाद अहिंसा है, और ये हम सुनते आए हैं अहिंसा परमो धर्म है। ऐसा हमारे जो साथी दीदी जी से कुछ प्रश्न पूछना चाहते हैं तो आप उन प्रश्नों को कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। दोस्तों, कमेंट से हम प्रश्नों को पढ़ेंगे और दीदी जी से उस पर मार्गदर्शन भी लेंगे। आपके कमेंट्स आप फेसबुक पर, यूट्यूब पर, जहां पर भी आप इस वीडियो को देख रहे हैं उसके कमेंट सेक्शन में लिखें और वहां से हम एप्रोप्रिएट कुछ प्रश्नों को चुनकर दीदी जी से पूछेंगे। अभिजीत हमारे साथ एक साथी हैं और वो फेसबुक से हमारे साथ जुड़े हैं। वो कहते हैं कि वो बचपन से मांसाहारी हैं, नॉन वेजिटेरियन हैं, और बहुत प्रयास भी किए उन्होंने अपनी इस आदत को छोड़ने के लिए, इसको बदलने के लिए, बट हर बार मैं बार बार फेल हो जाता हूँ। कोई आसान तरीका बताइए जिससे मैं ये मांसाहार छोड़कर मैं शाकाहारी बनूं, ऐसा अभिजीत पूछते हैं।
अगर आप बार बार चाहते भी हैं कि मांसाहार छोड़ें और फिर आपका ये व्रत टूट जाता है, इसका मतलब कि आपने अहिंसा को बहुत गहराई से महसूस नहीं किया। आप खुद अपने साथ फैसला कीजिए, शांति और एकांत में बैठकर आप इस बात पर गौर कीजिए कि आपके छोटे बच्चों को अगर कोई मार डाले आपको कैसा लगे। इन प्राणियों में, चाहे मुर्गी है, बकरी है, गाय है या कोई भी प्राणी है, जिसको मार करके इंसान खाता है, तो क्या जब उन लोगों को काटा जाता है तब आपने उनकी व्यथा को देखा है? अगर एक आप इंसान हैं और उसकी व्यथा को आप देखिए, आप तो दूसरों के द्वारा काटा हुआ लाके खाते हैं, दूसरों के द्वारा बनाया हुआ खा लेते हैं, पर जहां जब उन प्राणियों को लाया जाता है, काटा जाता है, उस समय जो उनकी दुख की चरम सीमा होती है, अगर आप उसको देखेंगे तो आप कभी नहीं खाएंगे। योग इसलिए ही करना है, मन और बुद्धि को परमात्मा से जोड़ना, उनसे मनोमिलन मनाना, वो योग है। और जब हम उस पिता को याद करते हुए इन सब बातों को रियलाइज करते हैं तो हम बहुत मजबूत बन जाते हैं बुराइयों को छोड़ने में। आप अवश्य राजयोग सीखिए, प्रतिदिन अभ्यास करिए, योग का संपूर्ण राज समझिए, और अगर आप में दया है, प्रेम है, इंसानियत है, तो आप कभी दोबारा मांसाहार नहीं करें। और रोज इस व्रत को सुबह और शाम साइलेंस में बैठकर परमात्मा की याद में रिवाइज करें। हम क्या करते हैं कि व्रत ले लेते हैं कि नहीं खाएंगे, पर फिर उसको रिवाइज नहीं करते, रियलाइज नहीं करते हैं, इसलिए फिर वो कमजोर पड़ जाता है। वहां ही तो योग शक्ति की जरूरत है।
जी दीदी, जैसे आपने ये बात कही कि हमें ये व्रत लिया है और इसके योग को करने में मदद मिलती है, और योग इस व्रत को अच्छे से फॉलो करने में भी हमें मदद करता है, और हमारी वृत्ति को यह अहिंसात्मक बनाता है। हमारे एक और दोस्त हैं, ये यूट्यूब से जुड़े हैं, मिट्सी नाम है इनका, और ये प्रश्न पूछते हैं कि क्या कभी कभार जब हम अहिंसात्मक वृत्ति को अपना लेते हैं, कि अहिंसा अपने जीवन में अपना लेते हैं कि हम किसी को कष्ट नहीं देंगे, कोई हमें भला बुरा भी कहता है तो हम कुछ रिएक्ट नहीं करते, सब कुछ सहन करने लग जाते हैं, कोई हिंसक बातें बोलता है, कोई हिंसक वृत्ति हमारे प्रति रखता भी है, कोई मार भी देता है हमें, कोई झापड़ लगा देता है, फिजिकली हिट भी करता है, तो हम सहन करने लगते हैं, तो क्या ये सहन करना भी कहीं अन्याय नहीं हो जाएगा, ऐसा वो पूछते हैं।
बहुत सुंदर प्रश्न पूछा है कि जैसे आपने कहानी सुनी होगी कि वो सांप सबको डसता था और बहुत लोग मर जाते थे, तो एक संत ने उसको कहा कि डसो मत, तो उसने उस दिन से डसना बंद किया, तो लोगों ने धीरे धीरे उस पर पत्थर मारना, उनको परेशान करना शुरू कर दिया। तो सर्फ ने संत को कहा कि आपके कहने पर मैंने अहिंसा धारण की, तो लोग मुझे ही तकलीफ दे रहे हैं। तो संत ने कहा, मैंने कहा था कि डसो मत, फुकारो नहीं, ये थोड़ी मैंने कहा था। तो हमें अपना शक्तिशाली रूप बनाए रखना है, हमें हमारे उस रूप से, हमें कोई कमजोर नहीं बन जाना है, पर हमें अपना शक्तिशाली रूप बनाकर हमें दिखावा करना है, तो भी हम औरों को कंट्रोल कर सकते हैं। हमारी गवर्नमेंट भी यही कहती है ना कि हमें कायदा हाथ में नहीं लेना, कोई हमें परेशान कर रहा है, हमारे प्रति ऐसी दृष्टि रख रहा है, तो हम कायदे कानून की मदद लें, घर के बड़े बुजुर्गों की मदद लें, उसकी तो मना नहीं है, पर हम हाथ उठाएं, ये हमारा अपना स्वरूप ही योग्य स्वरूप नहीं है, परंतु हम जस्ट एक रोल के रूप में शक्तिशाली रूप रखे, दिखावा करें। अंदर में तो हमें हर आत्मा के लिए कल्याण की भावना है कि इनके ये संस्कार भी बदल जाएं, और हमारे कायदे भी बने हुए हैं व्यावहारिक जगत के भी, तो हम उनकी मदद से भी सेफ्टी लें, माना हमें किस तरीके से उनका सामना करना है वो तरीका हम यथार्थ अपनाएं।
जी बहुत ही खूबसूरत बात आपने कही कि अहिंसा का मतलब ये नहीं है कि हम हर चीज को सिर्फ मान के चलें। जो दीदी ने उदाहरण दिया कि अहिंसात्मक रहना मतलब समझबूझ के साथ रहना है, अपने आप को शक्तिशाली बनाना है कि सामने वाला आपके प्रति हिंसक भाव न रख सके, अंदर से अपने आप को ये शक्तिशाली बनाना है। हमें खुद कटुवचन बोलने की जरूरत नहीं पड़े, मगर हम अंदर से स्ट्रांग रहें, जो हमसे लोगों को वो चीज दिखे कि भाई ये अहिंसात्मक है, ये कमजोरी की निशान नहीं है, शक्तिशाली हैं, इनके पास बल है, मगर ये इस बल का उपयोग नहीं करते। तो इसलिए अक्सर ये कहा जाता है कि भाई डंडा चलाओ नहीं, मगर हाथ में डंडा जरूर रखो। तो ये चीज हमें समझ में आती है। तरुणा जी हमारे साथ हैं, तरुणा शंकरी नाम है इनका, और ये YouTube से हमारे साथ जुड़े हैं। ये कहते हैं कि एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन, हाउ टू डील व्हेन समवन हर्ट्स यू विदाउट बीइंग अफेक्टेड। ये कहते हैं कि हमने सुना है कि प्रति एक क्रिया के लिए एक प्रतिक्रिया होती है, मगर जब कोई सामने वाला व्यक्ति, उस पर तो कुछ असर नहीं हो रहा है मगर वो मुझे हानि पहुंचा रहा है या मुझे हर्ट कर रहा है, कुछ कटु वचन कह रहा है या फिर फिजिकली मेरे पे वार कर रहा है या मुझे मार रहा है या कोई भी ऐसी चीज है जब वो हर्ट करने के लिए कह रहा है और उस पर तो कोई असर नहीं हो रहा है, तब हम उस चीज को कैसे डील करें, करुणा पूछती है।
हाँ देखो, वैसे भी तो कहा जाता है कि जहां स्वरक्षण का प्रश्न आता है तो वहां तो हमें अपनी सुरक्षा के लिए कदम उठाना है, लेकिन कोई अपमान करता है तो हमें, इसका मतलब अगर हमने अपना लोगस ऑफ कंट्रोल उसके हाथ में दे दिया है ताकि उनके ऐसे शब्दों को स्वीकार कर हम भी अपने आप को अपमानित महसूस करते हैं, किसी के ऐसे वैसे कुछ भी कह देने से तो हम ऐसे नहीं हो जाते हैं ना, इसलिए हमें अपने स्वमान में रहना चाहिए, हमें अपनी ऊंचाई में रहना चाहिए कि वो कुछ भी कहे परंतु मैं तो ऐसी नहीं हूं तो मैं उस रॉन्ग फीलिंग में क्यों आऊं, मैं क्यों दुखी हो जाऊं। और हम उनको भी सावधान कर सकते हैं कि आप अपनी वाणी पर संयम रखिए, नहीं तो हमें भी आता है, पर हम ऐसा अयोग्य आचरण करना नहीं चाहते हैं और आपके कहने से हम ऐसे नहीं हो जाएंगे, हम जो हैं वो ही हैं। तो अगर हम अपने गौरव में रहे, अपने स्वमान में रहे, तो हमें अपमान की फीलिंग नहीं आएगी। जितना आप दुखी होंगे वो आपको परख जाएंगे और बार बार आपको अपमानित करेंगे, इसलिए हमें उन शब्दों को स्वीकार नहीं करना है। कोई व्यक्ति आपको कोई चीज दे रहा है और आप स्वीकार नहीं करते हैं तो वो चीज उनके पास ही रहती है। इसी प्रकार ऐसे वैसे शब्द कोई बोलते हैं या हमारे लिए गलत बातें करते हैं, हम उनको स्वीकार करके हम दुखी क्यों हो जाए, हमने किया ही नहीं है, हम ऐसे है ही नहीं। तो हम अपनी शक्ति में रहें और उस व्यक्ति को भी दूसरों के द्वारा, बड़ों के द्वारा, स्वयं के द्वारा भी उनको हम सावधानी दें, दुखी ना हो जाए।
जी, जब आप ये बात कहते हैं मुझे महात्मा गांधी की वो बात आती है कि अहिंसा कमजोरी की निशान नहीं है, सिर्फ एक शक्तिशाली व्यक्ति ही अहिंसा का प्रयोग कर सकता है। और शायद यही चीज आज अहिंसा को पूरी तरीके से समाप्त कर देता है कि ये हमारी आंतरिक शक्ति और बल का प्रतीक है कि हम एडवर्सिटी के फेस पर भी बिल्कुल अंदर की हिम्मत के साथ खड़े रहें। जब हम सहन भी करते हैं तो वो कमजोरी की निशानी न होकर हम एप्रोप्रिएट बिहेवियर और अपने बल के प्रदर्शन को हम सामने दिखाते हैं बट उसका उपयोग करते नहीं है। और दीदी जी ने जो उदाहरण दिया कि समय आने पर अगर कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा ऐसा कुछ करता भी है तो आप उनको समझाएं कि हम कमजोर नहीं है, हम चाहें तो हम भी ये कर सकते हैं, मगर हम इसलिए नहीं करते क्योंकि हमारा स्वभाव नहीं है। तो दोस्तों, आज की इस कड़ी में बहुत सारे प्रश्न आप पूछ रहे हैं, हमारे पास समय बहुत ही कम होता है क्योंकि हम आधे पौने घंटे के इस कार्यक्रम को लाइव आपके सामने ले आते हैं जिसमें हम कंप्लीट योगा यानी संपूर्ण योग को सीखने के प्रयास कर रहे हैं, यानी फिजिकल योगासनों को सीख रहे हैं, पतंजलि के अष्टांग योग को समझ रहे हैं और राजयोग की विधि को भी समझ रहे हैं, यानी योगासन और साथ साथ अष्टांग योग और साथ साथ राजयोग के अभ्यास यानी मेडिटेशन ध्यान को भी सीख रहे हैं। आइए आगे के कार्यक्रम की तरफ हम ले चलते हैं, मगर आज दीदी जी हमारे साथ जुड़े खास ब्रह्मा कुमारी मुख्यालय के शांतिवन परिसर से। मैं दीदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, नमस्कार।
थैंक यू।
दोस्तों, अब हम चलते हैं राजयोग की अनुभूति की तरफ यानी ध्यान मेडिटेशन की अनुभूति की तरफ, और आज हमारे साथ मेडिटेशन सिखाने के लिए राजयोगिनी एकता जी हैं जो हमें मेडिटेशन करवाएंगे और हम सभी साथ में बैठकर ये मेडिटेशन करेंगे। और ये जो मेडिटेशन है वो अहिंसा और करुणा के ऊपर है। ये सब हम सबके अंदर निहित भाव हैं। इन भावों को हम मेडिटेशन से और सशक्त बनाएंगे और इसे अभ्यास करेंगे। तो 5 मिनट का मेडिटेशन सेशन होगा और फिर उसके बाद फिर हम आपसे मुलाकात करेंगे।
अपने ध्यान को इस बाह्य जगत से समेटते हुए अपने अंतर जगत की ओर ले आएं। मस्तक के मध्य भाग में आज्ञा चक्र पे स्वयं को एकाग्र कर दें और अनुभव करें अपने दिव्य स्वरूप को। स्वयं को विचार दें कि मैं अति सूक्ष्म ज्योति बिंदु, एक चमकता हुआ सितारा हूं। मस्तक के बीच विराजमान होकर अपने इस शरीर रूपी गाड़ी को चला रही हूं। 5 तत्वों से बने इस शरीर की मालिक, शरीर रूपी चोले को धारण करके विशाल सृष्टि मंच पर अपना अभिनय कर रही हूं। इस अभिनय के दौरान विभिन्न सीन में मुझ चैतन्य शक्ति ने कई रोल अदा किए हैं। जिसको करते हुए मन में बहुत सारे भाव दूसरों की कही बातों के भाव, मन को दुख, राग, द्वेष, कड़वाहट से भरने वाले भाव कहीं भीतर में समा गए। आज अपने भीतर जाके उन सभी भावों को बाहर निकालने का एक प्रयास करेंगे। स्वयं को साक्षी होकर देखें और ऑब्जर्व करें कि जिस क्षण ये सभी भाव मेरे भीतर थे या बाहर से ये कहीं ना कहीं मुझे प्राप्त हो रहे थे, मेरा स्वयं के प्रति क्या नजरिया था। मैं एक चैतन्य शक्ति हूं, क्या उस शक्ति की स्थिति में मैं थी या कोई अन्य भाव मुझे कमजोर कर रहा था। और उसी के अंतर्गत मैंने स्वयं को भी, अपने साथ भी बहुत हिंसा की। नकारात्मक और व्यर्थ विचारों को अपने भीतर आने दिया, ये स्वयं के साथ मेरी हिंसा थी। आज अपने साथ भी अहिंसात्मक रवैया रखते हुए खुद की हीलिंग की शुरुआत मैं कर रही हूं। अपने आप को ऐसे विचारों से भरपूर करते हुए स्वयं को उस बेस्ट हीलर परम पिता परमात्मा से जोड़ें, अनुभव करें उसके प्रेम को जो सदा प्रेम से भरपूर है। प्रेम का सागर है, उसकी प्रेम की धारा मुझ चैतन्य शक्ति को भी प्राप्त हो रही है। मैं ज्योति पुंज स्वयं को, अपने आप को अनुभव कर रही हूं कि जो खाब, जो दुख तकलीफ मेरे भीतर मेरे ही द्वारा उत्पन्न की गई थी, वो सब इस प्रेम की धारा में, ईश्वरीय प्रेम में समाप्त हो गए हैं। और यही अहिंसा का भाव, प्रेम का भाव मेरे भीतर सर्व के प्रति भी जागृत हो गया है। अपने आसपास उपस्थित सभी के प्रति मेरे मन से ईश्वरीय प्रेम की अविरल धारा प्रवाहित होकर उन सभी तक पहुंच रही है जिनको मैंने कभी दुख पहुंचाया था, कष्ट दिया था। उन सभी का मन भी, वो सभी दुख तकलीफ की भावनाओं से मुक्त होकर मेरे द्वारा ईश्वरीय प्रेम को अनुभव करके बहुत राहत और खुशी को महसूस कर रहे हैं। मैं स्वयं भी इस भाव से अपने आप को बहुत सुखद स्थिति में, ईश्वरीय प्रेम में समाहित, संपूर्ण अहिंसात्मक नजरिए के साथ पुनः इस संपूर्ण विश्व को अनुभव कर रही हूं। एक ऐसा भाव जो सभी को स्वयं में समा लेता है, प्रकृति के साथ साथ हर जीव मात्र के प्रति, हर व्यक्ति के प्रति एक सकारात्मक रवैया, एक ऐसा प्रेम जो बिना किसी शर्त के है। किसी ने कुछ भी दिया, परंतु मैं स्वयं के साथ भी बहुत सकारात्मक प्रेममयी हूं और सर्व के प्रति भी प्रेम और अहिंसा भाव से भरपूर हूं। ना आंतरिक रूप से ना ही बाहरी रूप से मुझे किसी को भी दुख नहीं देना है, कष्ट नहीं देना है। परम ज्योति स्वरूप, परम पिता परमात्मा की मैं संतान, प्रेम स्वरूप अहिंसात्मक भाव से भरपूर सभी को ईश्वरीय प्रेम, सुख और खुशी देने वाली हूं। ये शक्ति, ये वाइब्रेशन मुझे भी हील कर रहे हैं, साथ ही मेरे संपर्क में आने वाले हर व्यक्ति को भी बहुत सुख पहुंचाकर उनको भी उस दुख और तकलीफ से उभरने में मदद कर रहे हैं। संपूर्ण विश्व प्रेम के भाव से भरपूर हो गया है। स्वयं को इस शक्ति से भरपूर कर दें। अहिंसा एक ऐसी शक्ति जो हमें स्वतंत्र कर देती है हर नकारात्मक और व्यर्थ भाव से। अपने आप को पुनः ये विचार दें कि प्रेम के सागर, परमपिता परमात्मा की संतान मैं चैतन्य शक्ति प्रेम से भरपूर हूं। ओम शांति।
दोस्तों, ये था आज का ध्यान सत्र और हमने आज योगासन में त्रिकोणासन सीखा और योग के बारे में जो अष्टांग योग के अलग अलग सूत्र हैं उसमें आज हमने दूसरा यम सीखा, वह है अहिंसा। कल एक और विषय पर और एक नए आसन और एक नए योग अभ्यास के साथ फिर मिलेंगे। हमारे साथ इस 21 दिवसीय योगा चैलेंज में साथ में बने रहिए। अपने दोस्तों, अपने घर के छोटे बच्चों और बुजुर्गों को, सभी को लेकर मिलकर योग करते हैं। इन 21 दिनों में एक नया क्रांतिकारी परिवर्तन अपने शारीरिक और मानसिक विकास के लिए योग का, यानी संपूर्ण योग का करते हैं। आज के लिए बस इतना ही, फिर कल मुलाकात होगी इस लाइव सेशन में। तब तक रखिए अपना बेहतर ख्याल और फिर होंगे हम सब कामयाब। नमस्कार।